अब ये बात खत्म हुई। अब अगली एक और कहना चाहिए हिलो हुज्जत, यहूद की क्या थी पहले समझा दूं, फिर आज समझ आएगी। कहते थे कि हम नबी सल्लम को एक ही सूरत में मान सकते हैं कि ये कुर्बानी करें और आसमान से आग आए और वो कुर्बानी ले जाए। होता क्या था पहले दौर में, आप थोड़ा सा इस अंदाज को समझे, फिर 183 में आपको शुरू करवाती हूँ। पहले दौर में इंसानियत बहुत थोड़ी सी थी ना, हज़रत इदरीस और हज़रत शुरू के जो नबी थे ना, बिल्कुल आदम अलैहिस्सलाम और नूह के करीब के जो अंबिया कराम थे, उस वक्त अल्लाह ताला की सुन्नत क्या थी कि जैसे मिसाल है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं अल्लाह के लिए कुछ कुर्बान करूँ, सदका दूँ। अब मैं क्या करूँ सदका करके, मिसाल है कि बकरा काटा या कोई भी कुर्बानी की, खुली जगह पर उसको काट के छोड़ आते थे। अल्लाह के हुक्म से आसमान से एक आग आती थी, जिसकी नीयत अच्छी होती, जिसकी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल करनी होती, खोट ना होता, उसकी कुर्बानी को आग आकर जला के खत्म कर जाती थी। तो ये इस बात की निशानी थी कि कुर्बानी कबूल हो गई। ठीक है, कुछ लोग जो गलत नीयत से करते थे या अल्लाह नौजी बैस की कोई ऐसी रुकावट थी कि जिससे नेकियां कबूल नहीं होती, उनकी कुर्बानी जलती गढ़ती रहती, लोगों को पता लग जाता तो बड़ी रुसवाई होती। ये पहले दौर में होता था क्योंकि इंसानियत थोड़ी थी, खाने वाले कोई नहीं थे। दूसरी बात है कि अभी आप ये सोचिए ना, ह्यूमैनिटी का चाइल्डहुड चल रहा था, अब तो हम आगे रूज बुढ़ापे पे पहुंचे हुए ना, इंसानियत आगे आगे आखिरी दौर है अब तो दुनिया का। तो इस लिहाज से यहूद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी कुछ ऐसी बातें गढ़ी थी, अब थोड़ा सा आयत पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि ज्यादा समझ आएगी। अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह अहद इलैना, जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने हमसे एक अहद ले लिया था, क्या अल्लाह नोमिन अली रसूल, के हम हरगिज नहीं मान लाए किसी रसूल पर, हद तयाती या ना भी कुर्बान, यहां तक कि वो एक ऐसी कुर्बानी पेश करे कि ताकुलुहुन नार, कि उस कुर्बानी को आग खा ले। बात समझ गए, कहते थे अल्लाह ने हमें कह दिया जी तौरात में, अल्लाह पे भी देखिए इल्जाम लगाते हैं, कहते हैं हमारे पास तौरात में ये बात लिखी हुई थी कि कोई ऐसा शख्स जो कुर्बानी करे और उसको आग खा ले, हम उसको रसूल मान लेंगे। ठीक है, और ये मोहम्मद सल्लम के दौर में तो ऐसा हो नहीं रहा, तो हम नहीं मान रहे। बात वाज़े, यानी अंदर दबी जुबान में ये बात है कि ये नहीं मान रहे। जवाब सुनिए कितना प्यारा है, कुल कह दीजिए, कज्जाकुम रसुलुम मिन कबली बिल बय्यिनात, ए नबी इनसे कहिए तुम्हारे पास मुझसे पहले बहुत से रसूल आ चुके हैं वाज़े मौजज़ों के साथ, यानी तुम मुझ पे तो एतराज कर रहे हो, व बिल्लज़ी कुल तुम, और वो चीज भी लेकर आए थे जिसके लिए तुम कह रहे हो, यानी उन्होंने कुर्बानियां की, आग खा गई उनको, लेकिन फलीमत कतल तुम हूं, फिर भी तुमने उनको क्यों कतल कर दिया, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। दूसरे लफ्जों में बात यह है कि मुझे तो कह रहे हो कुर्बानी को आसमान से आग खा ले और मैं नहीं ये कर पा रहा, तो तुम मुझे नहीं मान रहे, तो जो तुम्हारे अपने दौर के इंसेस्टर्स में जो नबी थे उन्होंने ये किया था, तुम तो फिर भी नहीं माने, असल बात यह है कि तुमने मानना ही नहीं है। देखिए कुछ लोग हैं ना, वो हमेशा साइड ले जाते हैं, उजर बना देते हैं, चूके ये या ये नहीं है तो इसलिए, तो जब वो हुआ फिर क्या हुआ था जी, उस दिन फिर क्या हुआ था। हाँ, इसका कोई जवाब नहीं है, ना मानने के 100 बहाने। असल बात यह है कि जिसके दिल में हिदायत की तलब नहीं होती वो इस तरह के मौजूद मानता है। अब आप देखिए ना कि मिसाल है, आप यहां कुरान सीखने आ रहे हैं, सीधा सा पता है, मुझे भी पता मैंने आना है, अच्छा मेरे पे ले लीजिए, मैंने आपको पढ़ाना था, तो मैं आपको नहीं, मैं तो नहीं आऊंगी इधर आने, पहले आप एक बकरा काटें, फिर वो नीचे रखें, फिर आसमान से आग आए वो जले, फिर मैं आऊंगी पढ़ाने। अच्छा जी, आप कहेंगे ये क्या आपने अजीब सी बात कर दी, फिर कोई मुझे, मैं कहूंगी नहीं भाई मैं आपको पढ़ाऊंगी, बट ये इधर नहीं मेरी कुर्सी चाहिए, आप ऐसा करें कि उधर अपना स्टेज से फिर मैं पढ़ाऊंगी। अगर मैं 2-4 दफा ऐसी बेतुकी बातें करूंगी, कितने दिन ये स्कूल वाले मुझे बर्दाश्त करेंगे, वो कहेंगे ऐसे मैं आपको पढ़ाना नहीं है। भाई जिसको हिदायत की फिक्र है, आप आए हुए हैं पढ़ने के लिए, मेरे पास पढ़ाने की बात है, हम बैठ के हिदायत ले लें। जो बहुत इफ्स एंड बट्स, ये लिख लें इस आयत का कोड, इफ्स एंड बट्स, इफ इट विल हैपन, आई वॉन्ट यू टू बट, इफ्स एंड बट्स से नहीं निकलेंगे तो हिदायत पर नहीं जमेंगे। सारी जिंदगी शैतान आपको इफ एंड बट में फंसाएगा, इफ बट इफ बट इफ बट, अगर ये हो गया ना मैं बहुत नेक हो जाऊंगी, बस अगर फैशन हो गया ना निकाब का तो मैं निकाब कर लूंगी, बस। कोई भी मिसाल ले लीजिए, जिस वक्त हिदायत की तलब आपको दिखे, हिदायत का मौका मिले, ले लीजिए। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल कंप्यूटर से दे सकती हूँ, आप देखिए कि आप पेलटॉप पे ही क्यों ना हो या किसी और जगह हो, आपको थोड़ी देर के लिए कोई इन्विटेशन आता है, ब्लिंक होती है ना विंडो, पॉपअप होती है, आप एक्सेप्ट करके अंदर जाएंगे, चले गए। अगर थोड़ी देर आप एक्सेप्ट ना करें वो चली जाती है। हिदायत का विंडो हमेशा पॉप अप नहीं करेगा आपकी जिंदगी में। आप अगर इफ में पड़े हुए हैं, बट में पड़े हुए हैं, अभी नहीं, कभी नहीं, तभी नहीं, ये भी नहीं, नहीं होगा आपसे। अल्लाह सुबहान तआला ने इतना सिक्योरिटी चेक लगाया हुआ कि जब तक दिल की अर्ज और तलब और तड़प ना हो, मैं आपसे कहूँ मैंने हर सूरत आपको पढ़ाना है, जमीन पे बिठा दें, ऊपर बिठा दें, एसी लगे ना लगे, हीटर लगे ना हो, मुझे पढ़ाना है, फिर आप करेंगे। जिंदगी के मेले में वही लोग कामयाब हुए जिन्होंने अपनी जाती जिंदगियों को पीछे करके अल्लाह के दिए हुए मौके को इस्तेमाल किया। यहूद मैं सोचती हूँ कितने थे इस मदीना में। अब आप तो इतने दिन से उनके किस्से सुन रहे हैं ना, यकीन करें 300-400 लोग थे टोटल मदीना में, कुर्बो जवार में रहने लगे। अगर वो रियलिस्टिक हो जाते, नबी सल्लम को मान जाते, आज पूरी दुनिया में, ये तकरीबन मैं कल परसों एक आर्टिकल पढ़ रही थी, पूरी दुनिया में शायद 2 करोड़ ज्यूज है इस वक्त, वेरी फ्यू, आटे में नमक के बराबर है पूरी दुनिया में ज्यूज, लेकिन पूरी दुनिया का कंट्रोल उनके हाथ में। अगर इनके फोर फादर यानी नबी सल्लम पर ईमान लाते, आज पूरी दुनिया में इस्लाम होना था। जितने ये ऑर्गेनाइज, जितने डिसिप्लिन और जितने ये वेल ऑर्गेनाइज, वेल प्लान्ड हेड प्लानर है, ये तो पूरी दुनिया को इस्लाम यूं पेश कर चुके होते कि हम जैसे निकम्मों के हाथ में इसलिए नहीं अभी तक दुनिया को दिखाया। हमने तो अभी लड़ने बढ़ने वाला इस्लाम दिखा रहे हैं, अभी तो मसलकों और जमातों का इस्लाम दिखाते हैं, अभी तो मेम्बरों पर जाके दूसरों को गालियां देने वाला इस्लाम है। इन्होंने को ऐसे दिखाना था, इन्होंने तो सोने के तश्त में पेश करना था इस्लाम, और ये होगा हजरत ईसा के आने के वक्त। सब ज्यूज जो उस वक्त जिंदा होंगे और वो वाकई अगर दिल से सच्चे मानते हैं, वो हजरत ईसा के हाथ पे मुसलमान हो जाएंगे। जो रह जाएंगे वो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, और ये होगा, हम देखे ना देखे ये होगा। तो लिहाजा अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं फइन कज़्ज़बू का, फिर है नबी अगर ये आपको झुटला दें, कोई तअज्जुब की बात नहीं है। ये मामला सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, फकद कुज़्ज़िबा रुसुलुम मिन क़ब्लिक, आपसे पहले भी बहुत से रसूलों को झुटलाया गया। जाओ बिल बैयिनाति वज़्ज़ुहुरि वल किताबिल मुनीर, जो आए थे वाज़े निशानियां और सहीफे और रोशन किताबें लेकर, यानी अल्लाह के नबी को तसल्ली दी। देखिए अल्लाह के नबी को ये नहीं था कि सेल्फ प्रोजेक्शन चाहिए थी मुझे माने, नहीं, अल्लाह के नबी को तड़प ये थी कि ये इनका इंजाम बुरा होगा। आज भी मेरे आपके दिल में एक तलब होनी चाहिए, अल्लाह लोग हिदायत से जुड़ जाए, मुझे कोई थैंक यू लेटर दे, मुझे सलाम करे ना करे, बाद में कोई रुख पलटे या फेरे मेरी वला से, एक दफा लोग दीन को मान ले। देखिए ना, माँ को तड़प होती कि बच्चा खाए, तो क्या माँ ये कहती मिर्ची खाए? माँ कहती इसको खिला दो, खा गया शुक्र है, खा गया ना ठीक है। ये ना कहे कि बस माँ का शुक्रिया अदा करे, अम्मी आप बहुत अच्छी हैं, मुझे फूल दे, फिर मैं कहूंगी इसने मेरे खाने का शुक्रिया अदा किया। तो आपके मेरे दिल में ये तड़प होनी चाहिए, अपने समेत दूसरों के लिए भी। बाद में हमारे दिल में दूसरों के लिए बड़ी होती है, अपने लिए कोई नहीं होती, कि अल्लाह लोगों को हिदायत से जोड़ दे। कभी अकेले में बैठ के ना सोचिए, दुनिया में लोग किस तेजी से, आप देखिए कैसी चेंजेस आ रही है ना, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जंगे लगी हुई है, हादसे हो रहे हैं, लोग जाके आगे जा रहे हैं, पलट रहे हैं, कोई बिगड़ा हुआ इस्लाम पे आ रहा है, इस्लाम वाले बिगड़ रहे हैं। इसी में एक दिन हमारा वक्त आ जाना है, क्या अल्लाह ये सारे नॉन मुस्लिम जो इस वक्त अनजानी की जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसी दुनिया से चले जाएंगे? तो दुआओं में शामिल करें ऐसे लोगों को, कि अल्लाह इनको मरने से पहले हिदायत दे। ये तड़प अल्लाह के नबी को बार बार इनके साथ मिलाती थी, और ये सच्ची तड़प होना ही असल में इस बात की दलील है कि आप हिदायत के रास्ते पे। आज आप हिदायत के रास्ते से जरा सा एक छोटा सा टर्न लेकर तो देखिए, आपको दूसरों की तड़प खत्म होगी, आप बोल नहीं सकते, आपको फिक्र नहीं रहेगी, आप इस बात पे अपने आप को रखेंगे कि लो मैं अब क्या करूं, मुझे क्या लगे, मैं कैसे कहूं, मैं खुद तो जाती नहीं, मैं किसी को क्यों दावत दूं? आप इधर आने की दावत किसको देंगे, कब देंगे? जब आप आते हैं। आप नहीं आते, आप कहेंगे, वो कहेगा अच्छा मिलेंगे उधर, नहीं मैं तो नहीं जाती, वैसे आप चले जाएं। वो इन्फॉर्मेशन तो हो सकती है, वो इन्विटेशन नहीं हो सकती। इसलिए दिल में सच्ची तड़प रखे, और वरना रह गई बात काम बढ़े हैं, काम बढ़े हैं तो अब आखिरी आयतों में देखिएगा, काम तो सारे एक दिन खत्म होंगे, और वो क्या है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत, हर जी नफ्स को मौत का जायका चखना है। 185 وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, और तुमको तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला तो क्यामत के दिन ही दिया जाएगा। فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, और जो कोई बचा लिया गया जहन्नुम से और दाखिल किया गया जन्नत में, वही कामयाब है। اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں کر لے. اور رہ گئی یہ دنیا تو وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ نہیں, صرف دھوکے کا سامان ہے. یہ صرف دنیا کے چار دن کے دھوکے کی بات ہے. یہ ہے اصل میں ساری مصروفیات کو کٹ ڈاؤن کر دینے والی چیز. ہم دنیا میں کتنے ناگزیر بنتے ہیں, میرے بغیر گھر نہیں چلتا, میرے بغیر میاں صاحب کھانا نہیں کھاتے, میرے بغیر بچے کھانا نہیں کھاتے. اب کدھر گئے وہ بچے اور وہ ماں, جب آپ نکلیں گے بیچ میں دیکھیے ذرا کیا ہوگا. یقین کیجئے کہ یہ سب سے بڑا دھوکا ہے کہ میرے بغیر کام نہیں چلتے. یہاں جو لفظ ہے نا کلو نفس, نفس واحد ہے اور نکیرہ ہے, یعنی کہہ لیجئے کہ کامن ناؤن ہے, چھوٹا بڑا, مومن کافر مشرک مواحد, جس کو بھی آپ نفس کہتے ہیں نا, ایون اس میں جانور کیڑے حشرات اور فرشتے بھی آتے ہیں. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ملک الموت کو بھی موت آئے گی جب اللہ کے سامنے جائیں گے, قیامت کا دھماکہ ہو گیا سب دنیا ختم, تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو کام مجھے دیا تھا نا وہ میں نے کر لیا. ہم ان کا نام اسرائیل جانتے ہیں, ویسے قرآن میں ان کو ملک الموت کہا گیا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے سب مر گئے, سب مر گئے, کہا جی اللہ تعالیٰ سب کو موت آ گئی. تو آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے, کیا اب آپ اپنی جان لیں, کیونکہ کل نفس ذائقہ الموت. اس کو سن کے روایت میں آتا ہے کہ وہ ایسی چیخ ماریں گے, کیونکہ ان کو موت کی سختی پتہ ہے کہ اگر کوئی اس وقت تک زندہ ہوتا تو وہ بھی اس چیخ سے مر جائے. کل نفس ذائقۃ الموت. اور ادھر عربی کی بڑی خوبصورتی ہے, ذائقہ لفظ اردو میں تو ہم کہتے ہیں نا ٹیسٹ کو, حالانکہ عربی زبان میں یہ اسم فاعل ہے مؤنث کے ساتھ ہے. یہ لفظ ایسے بھی ہونا چاہیے تھا کہ کل نفس, ہر نفس, میں اردو میں آپ کو بتاتی ہوں پھر زیادہ انجوائے کریں گے, ہر نفس چکھے گا موت کو. ہم یہی کہتے ہیں نا, یہاں یہ ترجمہ نہیں ہے, چکھے گا نہیں, چکھے گا ہوگا تو یزوکو, زا کا یزوکو فعل ہے, ذائقہ اسم فاعل ہے, یعنی نون اینڈ ورب کا فرق ہے. ذائقہ کیوں کہا گیا, یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ کلو نفس یزوکو الموت. اس کو فرق سے سمجھیے گا, جیسے آپ بیٹھے ہیں اور رات کا وقت ہے, آپ کا بچہ آپ کو کہتا ہے میں نے کل اسکول نہیں جانا, یا اسکول جانے کی کوئی بات ہے اور بچوں کا دل نہیں کرتا جانے کو, تو آپ کیا کہتے ہیں, ایک جملہ یہ آپ کہیں گے بیٹا آپ کل اسکول ضرور جائیں گے, ٹھیک ہے, اور دوسری صورت آپ کہتے ہیں آپ جانے والے ہیں اسکول, اٹھیے. شدت کس میں ہے, جانے والے ہیں, یعنی جائیں گے نہیں, جانا نہیں, یو ہیو ٹو ڈو. یہ ہے ذائقۃ الموت, مرضی ہو نہ ہو, تیاری ہو نہ ہو, جانا تو پڑے گا. اور میں اکثر اس لفظ پہ غور کرتی ہوتی تھی کہ ذائقہ کا لفظ کیوں آیا, چکھنا. ذائقہ عربی زبان میں جو لفظ ہے تھوڑا سا اس کو سنیے گا, زال واؤ ذوق, اردو میں ہم کہتے ہیں نا آپ کا ذوق بڑا اچھا ہے, وہی ذوق ہے, مزہ معلوم کرنا, تھوڑی سی چیز کھانے کو کہتے ہیں. تو موت کا تھوڑا سا ذائقہ چکھتے ہیں ہم, اور کتنا کڑوا اور کتنا میٹھا, یہ روایات ہے بہت ساری, ادھر اس وقت موقع نہیں ہے, الگ سے ٹاپک اس پہ جب بھی کبھی کوئی ایسا موقع ہوتا ہے تو اس پہ بات کرتی ہوں. کہتے ہیں کہ ایک شخص کو 500 سال بعد بھی پوچھا مرنے کے بعد کہ سناؤ کیا حال ہے, تو اس نے کہا آج بھی موت کا ذائقہ منہ میں ہے, آج بھی اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں. کسی چیز کو کھا کر اس کی اندرونی حالت کو معلوم کرنا, تجربہ کرنے کے معنوں میں بھی آ گئے. اور یہی لفظ حضرت آدم اور حوا کے جنت کے پھل کھانے کے لیے بھی آیا تھا, پڑھیں گے ہم سورت الاعراف میں, فلما ذاق الشجرہ, جب دونوں نے چکھ لیا یا تجربہ ہو گیا ان کو اس درخت کا, تو یہاں نفس کے ساتھ ذائقہ آ گیا, تو اس سے مراد ہے کہ ہر بندے کو جانا ہے, ضرور جانا ہے, چکھنا ہے موت کا ذائقہ. انما توفون اجورکم, اجور اجر کی جمع ہے, پھر تو پلٹ کے آنے کی کوئی بات نہیں, پوری وفا ہوگی. توفون وفا یوفی سے, فمن زخزخا, یہ زخزخا کو دیکھیں یہ نیا لفظ ہے, زح زح, زالحا زاہ, یہ ربائی ہے, چار ہیں اس کی اصل میں نا, زخزہو انہو کہتے ہیں اس سے دور کر دیا, ہٹا دیا, ایک طرف کر دیا, دوری کے معنوں میں, پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں, وما ہوا بمزحزہ من العذاب, سورہ بقرہ 96 آیت میں پڑھا, وہی لفظ ہے, طویل عمر سے. ادخل الجنہ, لفظ ادخل کو دیکھیے مجہول ہے انگلش میں, اگر میں بولوں تو پیسیو وائس ہے, ایکٹیو وائس نہیں ہے. ایک ہوتا ہے داخلہ, ادخلہ, یا ادخل کیوں آیا ہے کوئی بتا سکتا ہے اس کا فرق, देखिए एक है आप खुद दाखिल हो गए, और एक है क्योंकि आपको बड़े प्यार से दाखिल करता है। एक है हम खुद ही चल पड़ते हैं, कोई किसी दुल्हन को लाता है तो वो एक एक कदम नजाकत से उठाती भी आती है। उदखला में इज्जत है कि हम तुम्हें वेलकम कहते हैं, वार्म वेलकम टू यू, और आप इस जन्नत में दाखिल हो जाएं। फकद फास, ये फास लफ्ज देखिए, अभी तक जितना जोर हुआ है ना लफ्जों में कामयाबी में, वो मुफलिह पे हुआ है। सूरह बकरा में याद है, उलाइका हुमुल मुफलिहून। तो आइए थोड़ा सा फलाह और फौज, यानी फौजिया, आप में से किसी का नाम याद तो नहीं है? वैसे अभी तक हमारी कभी कोई फौजिया नहीं आई क्लास में, अल्लाह ले आए किसी फौजिया को। लंदन क्लास की एक स्टूडेंट है, मुझे याद है, बाकी नहीं पता मुझे। तो फायजा का लफ्ज है, चलिए आज अपने नाम की असल सुनिए। फौज जो होता है ना, किसी मुसीबत से छुटकारा पाकर खुशी मिलना, फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। मुफलिह में क्या था? मेहनत करके कामयाब होना। फायजा क्या है? फायजून। फौज क्या होता है? पहले किसी मुश्किल में पड़े, फिर आसानी में आगे। इसी तरह अपनी आरजू या खैर को हासिल कर लेना, मकसूद को पा लेना, मुसीबत से रहाई पा लेना। अब यहां सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने इसको फायज क्यों कहा? क्योंकि इस जन्नत के और हमारे बीच में भी बहुत मुश्किल है, ये मुराद है। जिंदगी का एक एक दिन बंदा गुजारता है, हर दिन अपने नफ्स पे पाबंदियां लगाता है, अल्लाह की पसंद नापसंद को सामने रख के जीता है, फिर नजा की घड़ियों से गुजरता है, फिर उसके बाद आप कह लीजिए कि इंसान कब्र हशर के मामलात के बाद फिर कहीं जाके जन्नत मिलेगी। यानी वो कहते हैं ना, तरकबुन न तबकन न तबकन, भी बड़े वो कहते हैं इश्क के इम्तहान बहुत है। अभी हमारे और जन्नत के बीच में बहुत सारे मरहले हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला हमें यहाँ एक ऐसी दुनिया की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि दुनिया के गम टूट भी गए, खत्म हो जाएंगे, एक वक्त आएगा चले ही जाएंगे ना, वहां जाके ना मिला तो क्या बनेगा। वो कहते हैं ना कि मर के भी ना चैन पाया तो किधर जाएंगे। दुआ भी है अल्लाह के नबी की कि अल्लाह मौत मेरी जिंदगी की आखिरी तकलीफ हो, मौत के बाद ना कुछ मिले, क्योंकि हदीस में आता है कि मोमिन की मौत के वक्त भी उसको पाक किया जाता है। क्योंकि दुनिया में हम अपने आप को जितना मर्जी बचा लें, तकलीफें तो आती रहेंगी। हर दिन एक मौत चखते हैं हम, कई लोग तो दिन में दो तीन बार चखते हैं माशाल्लाह, सो सो के जागते हैं, जो जाग के सोते हैं सो ना जाए, वो किसी की एक स्लाइड पड़ी चलो फिर सो जाते हैं, वैसे भी जाग के कौन सा तीर मारना है, तो कुछ का सोना या जागना एक बराबर होता है। आज उम्मत का यही हाल पड़ा, जागी हुई उम्मत भी सोई हुई है। तो मौत भी एक नींद की बहन है, हदीस में आता है कि जन्नत में नींद नहीं होगी क्योंकि ये मौत की बहन है। इब्ने मसूद कहते हैं कि एक मौके पर अल्लाह के नबी ने जमीन पर एक चौकटा खींचा, अगर आप अपने नोट्स में से रेक्टेंगुलर बनाए ऐसे खींचा, फिर इसके दरमियान एक खत खींचा, एक चौकटा ठीक है, फिर इसके दरमियान एक खत खींचा और वो उसके दीवार के बाहर खींच दिया, और फिर इसके दरमियान छोटे छोटे खत खींच दिए। आपने फरमाया ये चौकटा रेक्टेंगुलर ये इंसान की जिंदगी की हद है, उसके बीच में एक खत खींच के जो बाहर जा रहा है ना ये उसकी मौत है, और जो बीच में छोटे छोटे खत है ना ये मुश्किलात है जो जिंदगी में आती हैं बंदे के ऊपर, और ये मुश्किलात बंदे को घेरे लेती हैं, और इसी के साथ उसकी ख्वाहिशात और तमन्नाएं। पढ़ के सुना देती हूँ, आपने एक चौकटा खींचा, खत खींचा बीच में, जो खत चौकटे से बाहर निकला हुआ था, इसके बाद दरमियान वाले खत के इस हिस्से में जो चौकटे के दरमियान में था छोटे छोटे बहुत हदूद खींचे, फिर फरमाया ये इंसान है, ये इसकी मौत है जो इसे घेरे हुए, और जो बीच का खत बाहर निकला हुआ ये इसकी उम्मीदें हैं। वो कहते हैं ना हजारों तमन्नाएं ऐसी, कोई शेर है ना, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले, वही बात है ये। यानी बंदे की मौत आ जाती है लेकिन उसकी तमन्नाएं नहीं पूरी होती, और छोटे छोटे खतूत इसकी दुनियावी मुश्किलात है। इंसान एक मुश्किल से बचता है तो दूसरी में फंसता है, फिर दूसरी से तो तीसरी में। ये बुखारी की रिवायत है 6417 या 71 नंबर की है। तो अपने ऊपर लेकर हम खुद सोच लें कि हमारा क्या हाल होगा। फमन ज़ुहज़िहानिन नार, अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत की बालिश्त पर, ये होती है बालिश्त, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, बालिश्त ही बोलते हैं पंजाबी में, गिट कहते हैं ना, बालिश्त भर। अब ये कितनी को जगह है, आप नीचे जमीन पर डालें तो ये हाफ फुट भी नहीं बनेगा, अगर ये चौकटा देखे तो मुझे लगता है ये 2.5 फुट का होता है, 2.12। इतनी सी जगह आपने फरमाया दुनिया व माफी हा से बेहतर है, जन्नत में किसी को एक बालिश पर जगह मिले, फरमाया ये दुनिया और उसके अंदर सब कुछ। अब दुनिया में क्या कुछ है, नियाग्रा फॉल भी है, केटू पहाड़ भी है, उसमें एफल टावर भी है, जो कुछ आप सोच सकते हैं उस सब से जन्नत की एक बालिश पर बेहतर है। का अगर चाहो तो पढ़ लो, फमन जोखसिहाने नारी बहुत खिलल जन्नत फकत फास। ये मुसद्रिक हाकिम और इब्ने अबी हातिम की रिवायत है। रह गई दुनिया वमाल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कभी अपने आप को अकेले में लेकर सोचे ये क्या धोखा है। यहाँ गरूर का लफ्ज बोला है धोखे के लिए अल्लाह ताला ने। गैन रा कहते हैं फरेब में आना, उसे फरेब दिए, बेबुनियाद उम्मीदें दिलाना। ये जो हम कहते हैं फलां बड़ा मगरूर है, वो भी ये लफ्ज है। मगरूर कौन होता है, होता कुछ नहीं है अंदर, अपने आप को बहुत बड़ा समझा होता है, वो धोखे में ही होता है। मगरूर उस शख्स को कहते हैं जो किसी औरत से ये समझ कर शादी कर ले कि वो आजाद है, लेकिन बाद में मालूम हो वो तो लौंडी थी। यानी किसी लौंडी से निकाह हो जाए ये सोच के कि ये आजाद औरत है, बाद में पता चला कि वो नहीं था, तो उस शख्स को मगरूर कहते हैं, उसके साथ धोखा हो गया। इसी तरह फिर मगरूर हर वो बंदा अपनी वो खूबी सोचे जो उसके अंदर है नहीं है। जब किसी ऊंटनी का दूध कम हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, तो गुमान नहीं था कम होगा, ऐसी ऊंटनी को गारतिन नाका कहते हैं अरब लोग। और भी इसमें बहुत सारे मफहूम है, लेकिन दुनिया एक धोखा है। क्या है, जो मिल जाए तो मट्टी, ना मिले तो सोना है। आज भी देखे जो चीज आपके मेरे पास नहीं होती, मन उसी के पीछे पागल हो रहा होता है। कोई चीज लेने को दिल करे और ना मिले तो उस वक्त इस आयत को सोचे कि जो मिल गई है उसका आज क्या बना। जो चीज तन पे लग जाए एक बार उसकी कदर रह जाती है, कीमत रहती। पहना हुआ कपड़ा किसी को देंगे तो कितने का है, 2 टके का। जब तक नहीं जिस्म पे लगा हो सकता है कोई ले ले, है ना। ये है दुनिया, वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, धोखा। और ये सारा आगे हमने बार बार पढ़ना है। अल्लाह दिलों को बदलना चाहता है। आपको एक तकाबुल देती हूँ, नोट्स में कॉलम बनाइए। एक तरफ लिखिए दुनिया को तरजीह देना और दूसरी तरफ लिखिए आखरत को तरजीह देने वाले, यानी जिनकी प्रायोरिटी दुनिया और जिनकी आखरत है। एक तरफ आपने दुनिया लिखी है तो एक आखरत। तो दुनिया को तरजीह बनाने वाले अल्लाह को भूल जाते हैं, उनको किसी मामले में रब याद ही नहीं रहता। अब ऑपोजिट दूसरा खुद ही लिख ले बार बार बोलने की बजाय, आखरत वाले अल्लाह को कभी किसी हाल में नहीं भूलते। ये नहीं हो सकता कि मैं उसको भूल जाऊं जिसने मुझे नेमतें दी, ये कभी हो नहीं सकता। इससे ज्यादा नमक हरामी नहीं होगी, और मैं तो उसको गुस्सा दिला दूंगी कि जिसने मुझे नेमत दी और मैं उसको भूल जाऊं, मेरी फजर चली जाए सिर्फ इस वजह से कि रब ने मुझे बिस्तर नरम दे दिया और गर्म बिस्तर दे दिया और हीट दे दी। अब मुझे क्या करना है, बच्चा दे दिया रब ने, मेरी जोर चली गई उसकी वजह से। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को रिस्क पे डाल रही हूं अगर मैंने अपने बच्चे की वजह से नमाज छोड़ी। शौहर की खुशी के लिए मैं अपने रब को नाराज करूं, मैं इस बात का सर्टिफिकेट ले रही हूं कि कल मेरा शौहर भी मुझसे नाराज होगा इसी बात पे। तो याद रखिए ये दो मुख्तलिफ रवैये हैं। दूसरा फर्क क्या होता है दुनिया और आखरत वालों का, दुनिया वाले गलती पर कायम रहते हैं, एतराफ नहीं करते कभी, ना इन्हें शर्मिंदगी होती है ना अपनी गलती दूर करते हैं। इसके ऑपोजिट आखरत को तरजीह देने वाले, गलती होती है, मत सोचिए कि आपसे गलती नहीं होगी, होगी, तौबा करेंगे और अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे। तीसरा बड़ा फर्क क्या होता है, दुनिया को पाने वाले कौन है, ऐसी महफिलों में जाते हैं जहां अल्लाह से बेताल्लुकी होती है, दीन से दूरी होती है और बेहयाई के मौके खुलते हैं। इसके बरक्स आखरत चाहने वाले ऐसी मजलिसों में जाते हैं जिनमें अल्लाह से ताल्लुक कायम होता है। चौथा फर्क क्या है कि दुनिया वाला माल और दुनिया के हसूल की कोशिश में दुनिया से चला जाता है, जबकि ऑपोजिट आखरत वाला अल्लाह की बड़ाई के लिए कोशिश करता है। और पांचवा ये कि दुनियादार मुआशरे के महरूम तबकात के बारे में दिल में कोई नरम गोशा नहीं रखता, जबकि आखिरत चाहने वाला लोगों के दुख दर्द को महसूस करता है, मोहताजों की मदद करता है। सवाल पैदा होता है कि जब ये एहसास होता है कि दुनिया एक धोखा है तो इंसान पे इसके असरात क्या आते हैं, तो नोट कीजिएगा। यानी मुझे क्या वाकई इस दुनिया की असल पता चलती है धोखा है कि नहीं। अगर ये बात मुझे यकीन आ जाए, यानी मैं अपने ऊपर लेती हूं, मुझे यकीन आ गया कि ये दुनिया धोखा है, तो मेरे अंदर क्या चेंजेस आनी चाहिए। नंबर एक, मैं दुनिया से जो मिलता है उसको खुशी से ले लूंगी, बाकी आखिरत में लेने की उम्मीद रखूंगी। दूसरा एक बहुत बड़ा असर इंसान की पर्सनैलिटी पे आता है, कि इंसान आखिरत के लिए हर तरह की मुश्किलात और आजमाइशें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाता है। कोई बात नहीं, ना चंद दिन की बात है, फिर अपना घर होगा, मजा करेंगे। आखिरत हमारा अपना घर है, अबदी घर है। फिर इसी तरह इंसान का माली नुक्ता नजर बदल जाता है, माल को आखिरत संवारने के लिए लगाता है। चौथा फर्क इंसान की शख्सियत में जाता है कि इंसान की एक्टिविटीज का फोकस बदल जाता है, सरगर्मियों का महवर मरकज बदल जाता है। वो आखिरत को बेहतर बनाने के लिए दुनिया में ऐसी एक्टिविटीज इख्तियार करता है जो उसके काम आए। मसलन जाती जिंदगी में अल्लाह को याद रखना, हर मामले में अल्लाह से रजू करना, अपनी गलतियों पर तौबा करना, ऐसी महफिलों में जाना जहां अल्लाह याद आ जाए, दुनिया में हक का बोलबाला करने के लिए कोशिशें करना, और इसी तरह की बातें। अब आप और मैं अपने आप से खुद पूछ सकते हैं, क्या हम वाकई इस चीज के लिए तैयार हैं? आप देखिए कितना कुछ सुनने कहने के बाद तो दिल मुझे खाली होता हुआ लगता है अंदर से। अब आखिर में बस दो आयतें रह गई हमारी सबक की, और जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तसल्ली दी है। अब जब हम दुनिया की बातें करते हैं ना, तो एकदम दिल में ख्याल आता है, नॉन मुस्लिम्स के पास सब कुछ ज्यादा क्यों है? शक्ल भी अच्छी, अकल भी अच्छी, काम भी अच्छे, उनके बाजार भी अच्छे, उनके कपड़े भी अच्छे, और प्लस ये कि हम मुसलमान बातें ही सुनते हैं, ये फुला ये फुला फुला आती है बातें कि नहीं जहन में? आज हमारे बच्चों को कभी आप पूछें, जो बेचारे दो मुख्तलिफ सोचों में जीते हैं, बाहर जाते हैं उनको दुनिया का कुछ और रंग दिखता है, जब अपने मुल्कों में जाते हैं कुछ और है, तो जब कहा जाए दीन पे अमल करो तो फिर बातें सुननी पड़ती। बस अगर आप अपनी बच्ची से कहें कि बेटा आप इस्लामिक हाल बोलिए मैं स्कूल कॉलेज जाएं, तो वो कहेंगे लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। स्काफ पहन लिया तो लोग मजाक उड़ाएंगे, निकाब पे तो पता नहीं क्या कर दें। बेटे से कहते हैं दाढ़ी रख लो तो लोग कहेंगे पता नहीं तुम टेररिस्ट हो। होता है ना, यानी अब अगली जो आयत है ना उसका मेन थीम क्या है कि मुसलमानों को बातें तो सुननी पड़ेंगी। वजह क्या है इसका, आइए जवाब लेते हैं। लतुबलवुन्ना फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, मुसलमानों याद रखो तुम्हें लाजमन आजमाया जाएगा तुम्हारे मालों में भी और तुम्हारी जानों में भी। आपको सूरत बकरा की कोई आयत याद आई इस बात पे? 155 नोट कर लें। وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ مَصَائِبَ خَمْسَةٍ, پانچ مصیبتیں پڑی تھی نا, تو یہ لکھ لیں. مسلمان ہونے کا مطلب ہے مشکلیں آئیں گی, جیسے ڈاکٹر بننے کا مطلب ہے پڑھنا پڑتا ہے, انجینئر بننا ہے تو دماغ لگانا پڑے گا, پائلٹ بننا تو رسک میں آنا پڑے گا, تو مسلمان ہونا تو ہوگا, اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈالے گا. ایمان کا راستہ پھولوں کی سیچ نہیں ہے, یہ کانٹوں بڑا راستہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ٹھنڈے ٹھنڈے اور بغیر تکلیفیں تو اٹھائے جنت مل جائے. سورہ بقرہ میں پڑھ چکے نا 214 میں, ام حسب تمن تدخل الجنہ, کیا جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ ولا تسمعن, چلو ٹھیک ہے مشکلیں تو آنی ہیں مان لیتے ہیں, اور کیا ہوگا جی؟ اگلا حصہ, ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم, اور تمہیں لازمن سننی پڑیں گی ان لوگوں سے بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی. یہ بھی اللہ کا وعدہ, مسلمانوں کو اہل کتاب یعنی پیپل آف دا بک جیوز اینڈ کرسچین سے باتیں سننی ہی پڑیں گی. ہر دور کے مسلمانوں کو سننی پڑی, نبیوں کو سننی پڑی. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا, اور ان سے بھی سننی پڑے گی جنہوں نے شرک کیا, یعنی مشرک پیگن کفار جو بھی جس مذہب پہ ہے وہ مسلمانوں کو باتیں سنائیں گے. کیسی أذًى كَثِيرًا, تھوڑی سی تکلیف کی باتیں. أذًى کا لفظ پیچھے کہاں پڑا ہے؟ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, حیض کے بارے میں, پیریڈز کے بارے میں پوچھتے ہیں, تو کیا کہا؟ یہ اذن ہے. اذن کہتے ہیں مائنیوٹ سی تکلیف, جسمانی بھی تکلیف ہو سکتی ہے, روحانی ایموشنل ہر طرح کی ہو سکتی ہے. کیا پتہ چلا کہ مسلمانوں کو دنیا کے ہر مذہب سے باتیں سننی پڑیں گی, کرو کیا؟ صبر کرو. اللہ کے نبی کو بھی یہ کہا گیا سورہ مزمل آیت 10 میں, وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا, آپ ان کی باتوں پہ صبر کیجئے اور ان کو اچھے طریقے سے الگ ہو جائیے ان سے. کوئی مجنوں کہتا تھا آپ کو, کوئی شاعر کہتا تھا, کوئی کاہن کہتا تھا. سورت ہجر کے بالکل آخر میں آیت 97 میں آتا ہے, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, اے نبی ہمیں خوب پتا ہے کہ جو مشرکین کہہ رہے ہیں اسے آپ کا سینہ بھیجتا, تکلیف تو آپ کو ہوتی ہے. آپ کو ان کی زبانوں سے جو کچھ سننا پڑ رہا ہے وہ سننا پڑ رہا ہے, کرو کیا؟ اب دیکھیے یہ علاج ہے, آج آپ کے بچے بھی کہہ سکتے ہیں آپ سے ہم کیا کریں, یہ جواب دیجیے, وَإِن تَصْبِرُوا, वतत्तको फैन जालिक मिन अज़्मिल उमूर। अगर तुम सबर करते रहो, साबित कदम रहो और तकवा की रविश इख्तियार करो तो ये बड़ी हिम्मत के कामों में से। सबर क्या है? डोंट बी रिएक्शनरी, रिएक्शन नहीं शो करो। हम मुसलमान अपना इमेज खुद लूज करते हैं, किसी को मुर्दाबाद कहते हैं, किसी को बुरा कहते हैं, करना कराना कुछ नहीं, धमकियां दे आते हैं, नारे लगा के आके घर में इंडियन फिल्में खोल के देखते हैं, चलो फिल्म देखते हैं, ये नहीं करो। और तब तक अपने दीन पे अमल करो, अंदर तकवा रखो, सब्र रखो कि फिर बात बनेगी, फिर अल्लाह ताला तुम्हें फायदा देगा, फिर तुम्हें ये सारी समझ आएगी। कितनी बात वाजे है, खुलासा क्या है? सिंपल बात है, मुसलमान होने की कीमत बातें सुननी पड़ती, क्योंकि मुसलमान अल्लाह के लिए जीता है, दुनिया दुनिया वालों के लिए जी रही होती है, बातें तो होंगी। आप अपने बच्चों से भी कहिए तो होंगी, ये तो चलेगा। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं कि इस आयत का ताल्लुक वो पीछे सही है, इन अल्लाह फकीर उन वाली जो आयत थी, तो काब बिन मालिक, और इससे रिवायत है कि यहूदी था एक और, उसने नबी सल्लम और सहाबा की शान में गुस्ताखी की, तो उस पर ये आयतें उतरी कि ये बातें तो अब तुम्हें करते ही रहेंगे, चलती जाएंगी ये बातें, बस आप सब्र कीजिए। क्या पता चला? जन्नत का रास्ता मुश्किलों का रास्ता है। नापसंदीदा कामों से खुद को रोकना और ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ चलना, ये नफ्स के लिए भारी है। अल्लाह ताला ने जन्नत को बहुत महंगा रखा हुआ है। अला इन्ना सिलतल्लाहि अल-ग़ालिया, एक हदीस का खुलासा है कि लोगों, अल्लाह का सौदा बड़ा महंगा है, कोई जन्नत सस्ती है? देखिए ना, आप एक रेडी से चीज खरीद लें और आप एक मॉल से खरीदें, फर्क है ना? पाकिस्तान की बनी हुई और अमेरिका की बनी हुई में फर्क है ना? तो जन्नत का ब्रांड लगा लें फिर कितना ऊंचा होगा, तो वो सस्ती कैसे मिले, मुफ्त कैसे मिले? दुनिया में हम मुश्किलात में उसको पे कर रहे होते हैं, इंस्टॉलमेंट से, हर मुश्किल जन्नत की इंस्टॉलमेंट है, वहां के घर लेने हैं, वहां के बंगले इंशाल्लाह लेने हैं। फिर इन मुश्किलात से इंसान सच्चा बनता है, एतमाद का बनता है, उसको अल्लाह का रास्ता और अच्छा लगता है। जिस पे जितनी मुश्किल आती है उसका उतना ही दिल वहां जमता है। और याद रखिए, ये मुश्किलात ना आए तो हम कब के लुढ़क छुड़क चुके चुके होते, फिर हम बिल्कुल ही पीछे हो जाते हैं और गुनाह भी धुल जाते हैं इंसान के। सबसे ज्यादा किसकी आजमाइश होती है? लोग कहते हैं गुनाहगारों की। हम सोचते हैं जो गुनाहगार है ना वो आजमाइशों में, नहीं। नबी सल्लम से पूछा गया, सात बिन वक्कास कहते हैं कि अल्लाह के नबी से पूछा किन लोगों की सख्त आजमाइश हुई, तो आपने फरमाया पैगंबरों की। अच्छा, उसके बाद जो उनके मर्तबे में अफजल है, फिर उनके बाद, यानी जितना ही वान ऊंचा होता है उतनी आजमाइश होती होती। फरमाया अगर किसी का दीन सख्त और कवि होता तो इसकी मुसीबत भी सख्त होती, दीन नरम है तो तकलीफ भी कम आती, यहां तक कि वो जमीन पर चलता है और इस पर कोई गुना बाकी नहीं रहता। ये इब्ने माजा की रिवायत है 4023। अच्छा, हम क्या कहते हैं? आजमाइश बड़ी सख्त आई हुई है आजकल मेरे ऊपर, वो मासी नहीं आ रही, यहां तो मासियों के रोने नहीं है, वो मेरी हीट नहीं काम कर रही। हम भी इसको बड़ी आजमाइश बना लेते हैं। आरों से चीरा गया, आज हम कहते हैं हमसे बातें नहीं सुनी, कोई देख के मुझे मुस्कुरा के चला गया या मुझे तेवरी चढ़ा के चला गया, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। उनके जिस्मों का आग में डाला जाता तो कहते थे करते हो तो करो। ईमान के साथ टेस्ट होता है, तो जरूरत इस बात की कि इंसान आजमाइशों में कामयाब होने के लिए इल्म हासिल करे, इस बात का कि ये तो होगा, फिर इसके बाद इंशाल्लाह फायदा होगा, सबर आएगा, इस्तकामत आएगी, इखलाकी कमजोरियां दूर होती हैं आजमाइशों में, दर्जे बुलंद होते हैं। और जितना ज्यादा आप और मैं इन चीजों के लिए अपने आप को जमाते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला आसानियां बाद में कर देता है। एक दफा जम जाए, अल्लाह बाद में आसानियां पैदा कर देगा। और यही बात कल उनके लिए थी, यही बात आज हमारे लिए है। अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें जमा के रखे। आप और मैं जितना ज्यादा अल्लाह ताला के वादों पे यकीन करेंगे, अल्लाह ताला उतना हमारे लिए इस मामले को आसान कर देंगे।
الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.